نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے ملنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسی چیز جو ہمارے یا دوسروں کے سننے میں مخل ہو، ہم اس کو ابھی سے ہی اپنے سے دور کر لیں، تاکہ تھوڑا سا وقت جو ہم اللہ کے نام پہ نکالیں تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، حنیف ہو کے. کوئی رکاوٹ ایسی نہ ہو کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے میں رکاوٹ پیدا کر دے. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ایسی حقیقت کو ٹچ کریں گے صرف، کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے اور بہت لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں کرنے کی بجائے، اگر اس وقت میں ہم کوئی ایک ایسی بات کر لیں اور سن لیں کہ جس سے ہماری باقی زندگی کو فائدہ ہو جائے، ہماری زندگی کے جو دن باقی ہیں اس دنیا میں ہم اس کا بہترین اور بھرپور استعمال کر لیں، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ فائدہ مند ہوگا. میں مختصر سا اس کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور، کیونکہ بات پیچھے سے چل رہی تھی. قل، کہہ دیجئے. کس کو کہا؟ اللہ کے نبی کو کہا. قرآن پاک براہ راست اللہ کے نبی پر نازل ہو رہا تھا، اس لیے بہت سارے احکامات جو امت کو ملے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ملے. قل کہہ کے، جیسے آخری صورتیں بہت معروف ہیں، قل اعوذ برب الناس یا قل ہو اللہ احد، اور کسی بھی حکم کی اہمیت کے تحت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بس پورے قرآن پاک میں ہر حکم ہمیں سب کو ایسے ہی دیا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بیچ میں اللہ کے نبی کو ڈالا گیا، کیونکہ جب کسی بڑے کے ذریعے سے بات کہلوائی جاتی ہے تو اس کی پھر عموماً قدر زیادہ کی جاتی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ حکم بھی کچھ ایسا ہی ہے. کیا کہا؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب. بہت پیارا انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. یہ نہیں کہا کہ ربی ابراہیم، ربی موسیٰ، یا ربی فلاں، یا ربی فلاں، کیونکہ جو میرا رب کہنے میں مزہ ہے وہ کسی اور کا رب کہنے میں تو نہیں ہے. سارے وسیلے، واسطے، ذرائع اور دوسرے تمام یعنی انسانوں کو الگ کر کے صرف اپنے رب کی بات ہوئی، اور قرآن پاک کا یہ انداز ہے. عموماً دعائیں ربی یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں. کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے. یہ کون سے وسوسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ شیطان کے ذریعے سے لگے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اوپر ایک شیطان और एक फरिश्ता मुकर्रर है। मतलब अभी हम यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, तो हमारा ईमान है कि हमारे साथ भी एक फरिश्ता और एक शैतान है। फरिश्ता क्या करता है? नेकी का हुक्म देता है। मसलन अभी दर्स शुरू होने से पहले हमने नमाज़ पढ़ी, अजान की आवाज़ जो है ना, उसको सुनते ही हमारे अंदर से एक आवाज़ उठती है, चलो उठो नमाज़ पढ़ लो। ये उस फरिश्ते का इल्हाम था, उसने हमारे दिल में बात डाल दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमूमन इंसान ऐसे होते हैं कि जो ही अजान की आवाज़ सुनते हैं, अंदर से एक पुकार उठती है कि उठो नमाज़ पढ़ो, तो साथ ही एक और आवाज़ आती है, अभी नहीं, वजू नहीं है, अभी सर्दी बहुत है, अभी यहाँ कैसे, मेकअप ख़राब हो जाएगा, अब बाहर हूँ, अच्छा बाद में। ये जो दूसरी आवाज़ है ना, ये शैतान की आवाज़ है। ये हर एक के साथ होता है, और इसको बहुत वाजे करके सुनना है ना, फजर की नमाज के वक्त सुन लें, जब गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है। एक तरफ पुकार होती है उठो नमाज़ पढ़ो, और दूसरी तरफ होता है अभी नहीं, अच्छा पहले तुम वजू कर लो। और जिन घरों में एक रेस्टरूम होता है वहाँ तो और ही आजमाइश शुरू हो जाती है, कभी किसी को पहले मौका ना देंगे, लेकिन नमाज के वजू पे कहेंगे अच्छा तुम कर लो, सारे घर के कर लें, सारी फैयाजी उसी वक्त होती है। हाँ, तो ऐसे तमाम मौक़ों पे एक इंसान किस चीज़ की दुआ करे कि अल्लाह मेरे शैतान को तौफीक ना देना कि वो मुझे बुराई के वसवसे डाल, मुझे वसवसे दे। ये तो मैंने एक सिंपल मिसाल दी ना, लेकिन इससे ऊपर की आयतों को भी देखें और आम जिंदगी में देखें, हर लम्हे शैतान हमें बुराई पे उकसाता है। इंसानी मामलात हों, छोटी छोटी बातों में हमें इतना बदगुमान कर देगा, दूसरे की छोटी सी बात पहाड़ लगेगी, ऐसे लगता है कि बस इसने तो मेरी अनाह को मजरू कर दिया, इसको किसने ऐसे मुझे क्यों कहा, इसने मुझे ठीक से सलाम नहीं किया, इसने मेरी इज्जत नहीं की, इसने मुझे मेरा हक नहीं दिया। इस किस्म के जो उबाल उठते हैं ना जहन में, ऐसे तमाम मौक़ों पे याद रखने की दुआ क्या है कि रब्बी आऊज़ बिक मिन हमज़ाति शयातीन। आप में से भी किसी को अगर गुस्सा बहुत आता हो, या बहुत डिप्रेशन हो, परेशान रहते हैं, या बदगुमान रहते हैं, हो सकता है, यकीन करें ये हर एक के साथ हो सकता है, हम सब इंसान हैं और इंसान दुनिया की बहुत हसास चीज़ है। हर लम्हे हम इंसानों की जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसमें टकराव होता ही रहता है, कुछ नहीं ना, अच्छे मौके पे भी मिलेंगे ना कोई बुरी बात हो ही जाएगी। लोग बड़े तपाक से शादियों पे जाते हैं, कई महीने की तैयारियां कर करा के, और उसके बाद वहीं छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, और लड़ने वाले कौन है? सगे भाई बहन, कोई पुरानी बात शुरू हो गई, कोई लेन देन की बात शुरू हो गई, कोई रिश्ते नातों की बात शुरू हो गई। तो कहीं भी अल्लाह ताला के मामले की बात हो, इबादत में सुस्ती हो रही हो, नेकी से दिल दूर हो रहा हो, या इंसानी ताल्लुकात में खराबी आ रही हो, तो इस दुआ को आप याद कर ले, कुरान पाक में लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है इसको याद करना। आयत नंबर 99 है सूरत अल मोमिनून का, और 18वां पारा है ये, ठीक है। तो पहली चीज़ आज की नशिस्त में हमने ये सीखी कि हम सबको हर लम्हे शैतान के शर से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि हम कितने ही अच्छे क्यों ना हों, लेकिन जो शैतान हमारे साथ लगा हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है। इसलिए जितना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उतना ही इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। आजमा के देख ले, किसी को गुस्सा आया हो या आपको आया हो, चुपके से खामोशी से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, आप देखेंगे कि गुस्सा भाग जाएगा। और साथ ही उससे बढ़कर फिर आगे और कुछ फरमाया, और वो क्या, वाउज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और ए मेरे रब, मैं इससे भी तेरी पनाह में आती हूँ कि ये शैतान हाजिर हो जाए। शैतान हाजिर भी होता है, बिल्कुल हाजिर होता है। कभी आपने सुना होगा फलां के अंदर जिन आ गया, जिन चिमट गए, किसी के बारे में आपने सुना होगा वो बावलों वाली हरकतें करने लग गया। ये तो दूर की बात है ना, बड़े अल्लाह ना करे ऐसा हो, बहुत थोड़े लोगों के साथ होता है, लेकिन क्या आपने आम जिंदगी में कभी ऐसा देखा? बड़े प्यार से सारे घर वाले खाने की टेबल पे बैठे थे, अच्छी बातें हो रही थी, कोई प्लानिंग भी हो रही थी, अच्छा इस वीकेंड पे वहाँ जाएंगे, ये होगा होगा, इतने में हल्की सी बात पे शौहर को गुस्सा आ गया, चाहे वो खाने में नमक ही तेज था, या कोई एक ऐसी बात छेड़ दी कि जिसके बाद वो मर्द जो है उनका पारा चढ़ गया, टेम्परामेंट लूज हो गया, और उन्होंने पकड़ के जोर से खाने वाली प्लेट जमीन पे मारी, जो मैं नहीं खाता। अब बेगम को भी थोड़ा गुस्सा आया, वो कहती, अच्छा सारा दिन पकाती रही, आप तो खुश ही नहीं होते। उसने भी पकड़ा और पटक के चमचा मारा। थोड़ी देर में वो टेबल जहां बड़े प्यार और मोहब्बत से बातें हो रही थी, वो ऐसे लगा जैसे खाना जंगी हो गई। ऐसा कभी होता है? ये है शैतानों का हाजिर होना। शैतान का एक अल्टीमेट गोल याद रखिएगा कि ये हमें खुश नहीं देखना चाहता, इसकी दुश्मनी है हमारे साथ। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने आदम को इज्जत दी कि इसको सजदा किया जाए। मारूफ वाक्य, लेकिन हमारे मौजू से ताल्लुक रखता है तो दोहरा लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना था, सब फरिश्तों ने कर लिया, लेकिन इबलीस जो था वो अना का शिकार हो गया। वो कहने लगा, मैं क्यों करूं? उसके अंदर ईगो आ गई, हाँ मैं तो आग आग से बना हूँ और इंसान मिट्टी से बना है, और आग जो है वो मिट्टी से बेहतर है, लिहाजा उसने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में जो रखा हुआ था वहाँ से निकाल दिया, और चंद मरहलों से गुजारने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत में भेज दिया। अब क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है और शैतान बाहर है। कल तक वो अंदर था और इंसान नहीं था। बजाय इसके कि इसने अपनी गलती को तस्लीम किया होता, और अकलमंदी ये होती है कभी कोई नुकसान पहुंचे तो अपनी मिस्टेक देखे, वेयर आई वॉज रॉन्ग, मैं कहाँ गलत थी। शैतान हमें क्या कहता है? नहीं, दूसरे गलत है। यही काम आदम के साथ हुआ। उसने बजाय इसके कि इस बात को रियलाइज करने के कि मैंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, उसने ये करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला, लिहाजा अब मैं इसका दुश्मन हूँ। कसमें खाई खड़े होके, अल्लाह ताला ने जब आदम को जन्नत दी तो शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र दे, मैं दोबारा जी उठने के दिन तक के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, जा ठीक है। कहा, मैं सबको बहकाऊंगा, आऊंगा इनके सामने, दुनिया को खूबसूरत करके दिखाऊंगा, ख्वाहिशात पैदा करूंगा, इनको दिखाऊंगा देखो ये दुनिया ही सब कुछ है, ये सब मेरे पीछे लग जाएंगे। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे चुने हुए बंदे जो है ना, वो नहीं मेरे पीछे लगेंगे, वो ये वो लोग होंगे कि जिनको अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का मौका मिल चुका होगा। सबसे कटके, सबसे बेनियाज होके वो अल्लाह की तरफ लग जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, शैतान बाहर था, उसको गुस्सा भी आ रहा था। सूरह आराफ अगर आप पढ़ें किसी मौके पे, तो उसमें पूरे अल्लाह ताला ने उसके वर्ड्स कोट किए हुए हैं कि मैं दाईं तरफ से आऊँगा, मैं बाईं से आऊँगा, मैं सामने से आऊँगा, मैं पीछे से आऊँगा। यानी इंसान को हर मुमकिन तरीके पे इस जन्नत में आने से रोकूंगा। क्यों? कि उसको पता है कि जिस जन्नत से मैं निकाला गया था, इंसान उसमें चला गया, तो मेरे लिए ये बड़ी रुसवाई की बात है। अब इस वक्त मेरी और आपकी, हम सब की समझदारी और अकलमंदी क्या है? अपने शैतान को पहचाने। दोस्त और दुश्मन की पहचान समझदारी की अलामत है ना। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जिसको दोस्त और दुश्मन की पहचान ही ना हो? दिन में कई बार हो सकता है आप अपने बच्चों को समझाते हो कि देखो बेटा, हर एक को दोस्त ना समझो, हो सकता है फलां तुम्हारी दुश्मनी हो सकता है जो तुम्हें बहुत मुखलिस बन के आज मिल रहा है, कल तुम्हें धोखा दे दे। कहते हैं ना, दुनिया में कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी करे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सोचें आप, कोई आपका बहाने से सारा माल ले गया, आपका सोना चोरी करके ले गया, हद से ज्यादा ये ना कि आपकी जान ले ली, मार गया, कोई मार भी गया, सारा सामान भी ले गया। लेकिन यकीन कीजिएगा, ये नुकसान उस नुकसान से बहुत छोटा है जो शैतान हमारा करना चाहता है। उस जालिम को तो इतना अच्छा ट्रिक आता है कि हमारे ही नुकसान की चीज हमारे फायदे की चीज बना के दिखाता है। यकीन करें, वो हमारे ईमान का दुश्मन है। जान जाती है ना, चली गई, माल गया तो चला गया, ईमान चला गया ना, तो ये ऐसे ही है कि जैसे जन्नत चली गई। आज अगर हम इर्द गिर्द नजर डाल के देखें, तो क्या लगता है, शैतान कामयाब है या इंसान कामयाब है? औरों को छोड़ दे, अपनी अमली जिंदगी में देखें, मैं समझदार इंसान हूँ, अल्लाह ने मुझे अकल दी, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मुझे आंखें दी, मुझे कान दिए, मेरा दिमाग बहुत जमा तफरीक करता है, मुझे बहुत अच्छे हिसाब किताब करने आते हैं, लोगों को देख के मैं समझ जाती हूँ, मुझे अच्छा खाना आता है, पकाना आता है, पहनना आता है, ओढ़ना आता है, हर चीज़ में मेरी अकल चलती है। लेकिन जहाँ बात आएगी वो कि जिसमें सरासर मेरा फ़ायदा है, मेरी आखिरत का फ़ायदा है, मेरे लिए जन्नत का फ़ायदा है, जब ऐसी कोई दावत, जब ऐसा कोई मौका मेरे सामने आता है, तो फिर मैं दुनिया की सबसे अहमक शख्स बन जाती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, अभी कहाँ भी नमाज़ें कौन शुरू करे, ज़रा और बड़े हो लें, और अच्छा अपने आप को छुपाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये अभी कोई उम्र थोड़ी है। यानी देखिए, सरासर मेरे फ़ायदे की चीज़ होती है, और शैतान क्या तावीलात करता है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, टलवाता रहता है, और नेकियों के मौके हमारे हाथ से चले जाते हैं। और एक इंसान किसी दीन वाले की किसी बात को एक कान नहीं सुन सकता, वो ये कभी नहीं सोचता कि ये बंदा जो दीन की बात मुझे कह रहा है, या दीन के किसी काम की दावत जो मुझे दी जा रही है, इसमें इसको क्या मिलेगा, इसका इसमें क्या फ़ायदा है। अभी मैं इधर आने से पहले एक बहुत ही प्यारी रिवायत पढ़ रही थी, और मैं खुद फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी, और मैं हैरान रह गई कि ये बात दुनिया की कितनी अजीब बात है कि कोई बंदा किसी को इखलास के साथ उसकी आखिरत संवारने के लिए पुकारे। आप सोचिए कितनी अजीब बात है। आज दुनिया में तो ऐसा मामला हो चुका है कि जिसमें हर बंदा कहता है जी वो बात करो जो दूसरे को अच्छी लगे, चलो हम क्यों ताल्लुकात बिगाड़ें, अच्छे तारीफें करते जाओ, चाय पीते जाओ, अमूमन यही रवैया है ना, हम क्यों बुरे बने, कि हम किसी के लिए बुरा क्यों बने। लेकिन जब कोई बंदा किसी को किसी ऐसे काम की दावत दे जिस दावत को कबूल करने से उसकी आखिरत संवर जाए, तो कितनी अजीब बात है कि इंसान उसको ना सोचे, ना समझे, ना उसको अपना मुखलिस समझे। आज देखिए कि मार्केटिंग का दौर है, प्रोफेशनलिज्म हर जगह मौजूद है, लोग अच्छे अखलाक से भी मिलते हैं, आप जाते हैं दुकान पे सुनार की, वो सबसे पहले आपको ये नहीं पूछते कि चूड़ियाँ लेनी है या कड़े लेने, वो कहते हैं ठंडा पियेंगे कि गर्म, आप कहते हैं कितना अच्छे अखलाक है, वो बोतल के पैसे आप ही की चूड़ियों में से निकलने हैं, वो क्यों देंगे आपको। हाँ, आप किसी बड़े अच्छे नाइस स्टोर में जाते हैं, एकदम डोर खोलते हैं, आपको हाय और पता नहीं हेलो कह के एक औरत ऐसे ही है जैसे आपके गले ही पड़ जाएगी, आप कहते हैं इन लोगों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। ये कौन से अखलाक हैं, ये सोशल अखलाक है, ये दुनिया के अखलाक है, कि ये अखलाक ना अपनाएंगे तो फिर तिजारत कैसे चलेगी। इन सारे अखलाक से भड़कर आप सोचिए एक बंदा जिसको पता है कि वो अगर आपको दुनिया की कोई बात कह दे तो आप बड़े खुश होंगे, आपकी तारीफें करे तो बहुत खुश होंगे, और ऐसे में अगर कोई इंसान ये कहे कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें जहन्नुम के अजाब से बचा दे, और तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलवा दे और आखिरत में भी इज्जत मिल जाए, कितने लोग उस पर दिल से कान भी धरते हैं। हमें शैतान ने क्या कहा, ये मौलवियों के काम है, ये देखो ये इनको और कोई काम नहीं है ना, बैठ के वाज देते रहते हैं, ये तकरीरें फरमाते रहते हैं, बात तकरीरों की नहीं हो रही। सिर्फ इस एक छोटे से नुक्ते को समझना और समझाना चाहूंगी कि दोस्त और दुश्मन का फर्क, कौन मेरा हकीकी मानों में मुखलिस है और किसका अपना फ़ायदा है। अल्लाह के नबी सल्लम ने जब मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो कुछ लोगों को तो बात समझ आ गई, फौरन मान गए, आमन्ना व सद्दकना, सुना और मान गए, और कुछ इस मुगालते में पड़ गए कि आखिर इनका मतलब क्या। उनको ये बात समझ ही नहीं आ सकती थी कि एक बंदा दिन रात हमें क्यों अल्लाह की तरफ बुलाता है। अच्छा, ज़रूर इसका कोई फ़ायदा होगा, अच्छा इसको सदर बनना है, कोई लीडर बनना है, अच्छा इसको मालदार बनना है, इसीलिए ऐसी ऑप्शन लेके आ गए। एक ऐसा मौका था, अबू तालिब जो नबी सल्लम के चचा थे उनके पास आए और कहने लगे अपने भतीजे को समझाओ, इसको पूछो ये चाहता क्या है, इसको हमारा सरदार बनना है, तो हम सब ऐलान करते हैं कि मिल के हम इसको सरदार मान लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी में वो लीडरशिप थी, मान लेते हैं सरदार बन जाएंगे, बाकी रह गई बात कि इसको दौलत चाहिए, हम सब मिलके इतनी दौलत जमा करेंगे जो इसको काफ़ी होगी, इसको दौलत देते हैं, लेकिन इसे कोई ये काम करना छोड़ दे। अच्छा, इसको खूबसूरत औरत से शादी करनी है तो हम अपने शहर की सबसे खूबसूरत औरत से इसकी शादी करवा देते हैं। और बाकी रह गई बात, अगर ये तीनों बातें नहीं है तो फिर यकीनन इसके दिमाग का नाउसुबिल्ला कोई खलल है, ये दीवाना हो गया। तो बताओ हम किसी अच्छे हकीम को बुला के इसका दिमाग दुरुस्त करवाते हैं। ये सारी ऑप्शंस मौजूद है, सीरत की किताबों को खोल के देखिए, लेकिन वो उस बात पे नहीं पहुंच सके जिस वजह से अल्लाह के नबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। ना इसमें आपका जाती फायदा था, ना आपको दौलत चाहिए थी, ना आपको माल। आपको चाहिए होता तो आप तो इन लोगों से थोड़ी लेते, अल्लाह खुद ही आपका घर सोने चांदी का बना देता। नहीं, वो तड़प जिसको सूरत अल-कहफ में अल्लाह ताला ने कहा, फलअल्लक बाखियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। इसका तर्जुमा क्या है? ए नबी, शायद के आप अपने आप को हलाक कर देंगे, यानी कुड़ कुड़ के, जल जल के, इस बात पे गम खा खा के, शायद आप तो फौत ही हो जाएंगे क्या, कि ये लोग अल्लाह की बात की तरफ क्यों नहीं आते। सूरह शुरा में ये बात है और कई जगह मौजूद है, और ये मुकाम नबुवत होता है, और उसके बाद जिसको अल्लाह इसकी तौफीक दे कि वो लोगों की बेदीनी पे लोगों को जहन्नुम की तरफ जाता देख के खुश नहीं रहता। आज दुनिया में जितने फितने हैं ना, और जितनी तेजी से इंसानियत नफ्स परस्ती की तरफ जा रही है, मस्नूई आर्टिफिशियल जिंदगी का स्टाइल है, रिश्तों की तमीज़ बदल गई। पहले माँ बाप और बच्चों का मामला मुख्तलिफ था, पहले बच्चे माँ बाप को खुश करना चाहते थे, आज यह है कि माँ बाप हर वक्त इस ख्वाहिश में कि बच्चों को खुश कर दे। पहले बच्चे जो थे वो माँ बाप से डरते थे, आज माँ बाप जो हैं वो बच्चों से डरने लगे। शौहर बीवी के ताल्लुक को देखिए, वहाँ भी इख्तलाफात हैं। इस सारी चीज़ों की वजह क्या है? कि हम उस चीज़ से दूर हो गए जिसने हमें दुनिया में भी इज्जत देनी थी और आखिरत में भी, और वो क्या थी? अल्लाह की ये किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, हुदा लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए, गाइडेंस है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन होता है? जो बच बच के चलता है, जिसको इस चीज़ का एहसास लग जाता है कि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मैंने इस दुनिया में नहीं रहना। देखिए कि आप सब यहाँ कई सालों से रह रहे होंगे, हो सकता है आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन आप ही में से किसी के हस्बैंड का तबादला हो जाए किसी दूर दूसरे शहर में 3 माह के लिए बिलफर्ज, कोई उनका कोर्स है या कोई उनका प्रोजेक्ट है, आपका यहाँ पूरा बना बनाया घर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे बताएंगी कि वहाँ सिर्फ 3 माह के लिए आपने रहना है, आप में से कितने लोग हैं जो ये कहें कि मैं वहाँ बिल्कुल इतना ही भरपूर किस्म का घर बनाऊंगी, इतना ही सामान जमा करूंगी, इतने सारे अहतमाम बनाऊंगी, फिर मैं वहाँ जाऊंगी? कोई एक भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? 3 माह की तो बात है, अपार्टमेंट ले लेंगे, किसी के पास रह लेंगे। क्यों? ये बात नहीं है कि 3 माह है, आपकी नज़र किस पे होगी? 3 माह के बाद जब वापस आना है, छोड़ देने का एहसास जो होता है ना, वो बंदे को रियलिस्टिक बनाता है। आप 3 माह तो ऐश कर लेंगे, मज़ा कर लेंगे, लेकिन उस दिन आप आंखों से आंसू बहाएंगे, क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं, ये डेकोरेशन रखूं या इसकी जगह कोई काम की चीज़ रखूं। वो एहसास आपको वो 3 माह बिल्कुल सिंपलिसिटी से गुजारने के लिए मजबूर कर देगा। क्यों? कि आपने उस जगह को छोड़ के जाना है। बिल्कुल यही कहानी इस दुनिया की है। इस दुनिया में भी वही बंदा अकलमंदी और समझदारी के साथ गुजारेगा जो यहाँ से वापस जाने को याद रखेगा। वापसी, हम सब ने वापस जाना है, जाना है ना? अब उस वापसी का सफ़र सुनते हैं इससे अगली आयतों में। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है। किन में से किसी एक को? जिसने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया, वक्त सही इस्तेमाल नहीं किया, ये सोचा कि मुझे इसी दुनिया में रहना है, और इसी की तैयारियां करते करते अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया। आप तसव्वुर में किसी को भी कर लें, और बड़ा ही बेहतरीन होता है कि अगर हम अपने आप को कर लें, खुद अपने आप को सोचिए, अल्लाह ना करे कि हम में से किसी का वापसी का सफ़र बुरा हो, लेकिन मौत तो बरहक है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और मौत का जायका जो है ना वो दो तरह का है, एक बेहतरीन और एक बदतरीन। बेहतरीन सबसे ज्यादा लज्जत वाला जायका जो है ना वो मोमिन की मौत का है, जब उसको दुनिया से जाना है। तय्यबीन या यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जीला रब्बी की राधियतम मर्दिया, खुशियों वाला इस्तकबाल वाला, सलामुन सलामुन तिबतुम तिबतुम, खुश आमदेद वेलकम वेलकम। फरिश्ते हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए खड़े हैं कि आओ ऐ इत्मीनान वाली रूह, चलो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ ले जाए। ये प्यारा जायका है, ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, जिसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, जिसने शैतान के हथकंडों को पहचाना। लेकिन इसके बरक्स एक वो शख्स है जिसने जिंदगी को सिर्फ जाया किया। दो तरह के मामले आते हैं, एक है जिंदगी गुजारना और एक है जिंदगी को जाया करना। जिसने अपने वक्त को गलत इस्तेमाल किया, अब उस शख्स की कहानी है इधर। कहा कि जब इसमें से किसी एक को मौत आती है, काला वो कहता है रब इरजिउनी, ए मेरे रब मुझे वापस लौटा। सोचिए आप सब बात को तब समझेंगे जब तसव्वुर में अपने आप को वहां ले जाए, इर्द गिर्द की हर चूं चां से बेनियाज हो जाए। यही इम्तिहान है दुनिया में रहने का, सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के एक रब की तरफ चलो। क्यों? क्योंकि अपनी वापसी याद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इसके पास मौत का फरिश्ता आता है तो फरिश्ते को देख के क्या कहता है, रब इरजिउनी, अल्लाह मुझे वापस भेज। कहाँ? इस दुनिया में। अभी नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? तैयारी नहीं की। आप देखिए दो तरह के हालात होते हैं। एक वो मामला है कि आपको कहीं जाना है, आप उसकी पूरी तैयारी कर चुके, आपने हाथ का बैग भी तैयार कर लिया, आपको पता है कि आपका कंफर्म टिकट है और ये टिकट वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने इसको यूटिलाइज ना किया। जब आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं कैफियत क्या होती है? घड़ी गिन रहे होते हैं ना, अब 3 घंटे रह गए, अब 2 रह गए, अब 1 रह गया, फिर तो बेचैन होते हैं जाने को। लेकिन इसका ऑपोजिट वे देखिए, ये कौन सा होगा? जब नहीं जाना चाहते, अभी तैयारी नहीं हुई, चले और छोड़ दे, मेहमानों को देख ले, घर में मेहमान आने वाले हो, आपने उनको दावत पे बुलाया हुआ है, आप सारी तैयारी कर करा के बैठे हुए हैं, तो मेहमान का आना खुशी देगा ना, जल्दी आए भाई जल्दी आए, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, मैं तैयार हूँ, बैठे थोड़ी देर बात करें, फिर तो वक्त ही कम रह जाएगा। और इसके बरक्स मेहमान को तो बुला लें और खाना ही ना पकाना शुरू करें, इसी आराम में कि अच्छा पका लूंगी ना, अच्छा पका लूंगी ना, अभी बहुत वक्त है। और जो आखिरी घंटा हो, आप जब उस भी वक्त में चूल्हे पे देखते चढ़ेंगे तो आप देखिए एक गिरेगा और एक चलेगा, कुछ कच्चा रहेगा और कुछ पक्का रहेगा, और हर आवाज पे आपका दिल दहल जाएगा कि हाय मेहमान ना आ जाए, अभी नहीं अभी नहीं। यही कैफियत है जिंदगी गुजारने की। और वो क्या कि एक इंसान दुनिया में रहते हुए अपनी कल की तैयारी कर चुका है तो मौत के फरिश्ते को देकर खुश होगा, और इसके बरक्स दूसरा इंसान जो है वो क्या कहेगा कि ए अल्लाह अभी मुझे वापस नहीं जाना। अल्लाह ताला के फरिश्ते जो होंगे वो क्या पूछेंगे, क्यों भाई? तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की बात कहते हैं कि दुनिया से जाते वह क्या कहता है कि अल्लाह अभी मुझे वापस भेज दे, क्यों? अब ये जुमला काबिले तवज्जो है, बल्कि लिख सकें तो इसको दिल की तख्तियों पे लिख लें। क्या कहेगा वो, लाअल्ली आमलु सालेहन फीमा तरकतु, ताकि मैं वो काम करूं जो मैंने छोड़े हुए थे। यानी दुनिया से जाते हुए मौत के फरिश्ते को देखकर इंसान क्या कहता है, ए अल्लाह दुनिया में भेज दे, पूछा जाएगा भाई क्यों, क्या करोगे? ताकि मैं वो काम करूं जो मैंने छोड़े हुए थे। एक ये मानी बनता है और एक इसका ये भी मानी बनता है कि वो दुनिया जो छोड़ के जा रहा हूं उसमें दोबारा भेज ताकि मैं कुछ अमल करूं। यानी अमलों की तो पूंजी हाथ में है ही कुछ नहीं, अमल तो है ही कुछ नहीं, मैं लेके क्या जाऊंगा? मुझे एक मौका दे दे कि मैं दुनिया में जाके कुछ काम कर लूं। अब ये तो उसकी बात थी ना, लग रहा है कितना अच्छा हो गया। अल्लाह ताला करें कल्ला, हरगिज़ नहीं, नेवर, इन्नहा कलीमतुन हुआ काइलुहा, ये तो बस एक बात है जिसको ये कहने वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं ये हमसे जान छुड़ा रहा है। जैसे किसी मुश्किल को देख के इंसान कहता है ना, एक चांस और मिल जाए मैं अच्छा हो जाऊंगा। अब इसका हाल क्या हो गया, मौत के फरिश्ते को देख के ये कह रहा है, और अगर इसको अल्लाह ताला एक मौका दे भी दे फिर भी नहीं करेगा। कुरान पाक में और कई जगह आता है कि वलाउ रुद्दू ला आदू, अगर इनको वापस लौटा भी दिया जाए ना, ये वही काम करेंगे जिसके ये आदी थे। और जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ, इंसान सेहतमंद होता है फिर एकदम बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं जी बस इलाज हो गया तो हो गया, नहीं तो जिंदगी खत्म। ऐसे वक्त में इंसान कहता है अच्छा मौत आ रही है, अल्लाह एक मौका दे, बस एक दफा इस बीमारी से उठ जाऊं फिर मैं अच्छा हो जाऊंगा। और अल्लाह दे देता है सेहत, 4, 6, 10 दिन, महीना कुछ उसका असर रहता है, फिर जहां से आते हैं वहीं पलट जाते हैं। कितने सफर जिंदगी में, कितनी दफा हादसों से बाल बाल बचे, कितनी दफा बीमारियों से बचे, चोरियों से बचे, परेशानियों से बचे। इसी तरह एक शख्स जब दुनिया से जाते हुए ये कहता है ना कि अल्लाह एक बार फिर दुनिया में भेज, वो काम जो छोड़े हुए थे वो कर लूं, क्योंकि जो करना था वो तो किया ही नहीं। देखिए उस वक्त एहसास होता है कि जो करना था वो नहीं किया, अब वापसी का सफर शुरू हो गया है, अब वहां तो पेशी होगी, लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे ये एक बात थी जो इसने कही, अब तो क्या है, व मिम वरा इहिम बरज़खुन इला यौमी युबअसून, अब तो इसके आगे बरज़ख है, एक पर्दा है। बरज़ख कहते हैं उस वक्त को जो एक इंसान अपनी मौत से लेके क़यामत तक गुजारे, चाहे वो कब्र में गुजरे, चाहे पानी में डूब गए, परिंदे ने खा लिया, यानी वो वक्त जो हमारी इस दुनिया की मौत से लेकर क़यामत के आने तक का वक्त है ना, वो मेरी बरज़ख है। अगर मैं सही सलामत फौत हुई, जैसे कि आम फौत होते हैं, लोगों ने मुझे पकड़ के मट्टी में डाल दिया ना, तो वो कब्र में मेरा गुजरेगा। इसी तरह कोई पानी में डूब के मर गया, लाश नहीं मिली, तो वो पानी के अंदर ही उसकी कब्र बन जाएगी। किसी के जहाज का क्रैश हो गया, उसको जर्रा जर्रा करके हवाओं में बिखर गया, अल्लाह उसके जर्रों को जमा करके उसकी बरज़ख कर देगा, लेकिन ये बरहक है, अजाब कब्र की तरफ इशारा है कि अब इसके लिए बरज़ख है, अब ये वहां रहेगा। और कब्र का वक्त मैं सोचती हूँ, अगर हम सबको अपनी कब्र की पहली रात याद रहे ना, पहली रात सिर्फ, तो हम दुनिया में कभी किसी की बात ना सुने, सिर्फ वही बात सुने जो हमारे आगे काम आने वाली है। आज दुनिया में क्यों मशगूल है वो भूली हुई है, आज गुजारा नहीं होता, मैं रह नहीं सकती, ठीक है शौक फरमाइए, बस वो रात याद कर लीजिए जब कब्र में तन्हा होंगे, मरने वाले को सब छोड़ के आते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी ऊपर से कब्रिस्तान से लोग हटे नहीं होते कि मुर्दे को बिठा दिया जाता है, फयातियानी मलकानी फयुजलिसानी, दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर, अनजान अजनबी, ऐसे चेहरे जिनको कभी देखा ही नहीं, और वो फिर आके इंसान का हिसाब किताब लेते हैं। वो तफ्तीश अगर याद रहे ना, मन रब्बू का माँ दीनू का और मर रसूलू का, तेरा रब कौन था और तेरा दीन क्या था, तेरा रसूल कौन था, सारी जिंदगी दीन इस्लाम कहता हुआ शख्स, अल्लाह अल्लाह कहता हुआ शख्स, अगर उसकी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं होगी, अल्लाह को माना लेकिन अल्लाह की नहीं मानी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त जुबान पे लफ्ज अल्लाह नहीं आएगा, क्या कहेगा, ला अदरी ला अदरी, आई डोंट नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, सिर्फ लफ्ज अल्लाह जुबान पे नहीं आएगा। और आप दुनिया में भी देखते हैं, आप जितनी मर्जी बात याद करके रखें, एंड वक्त पे आपके जहन से भूल जाती है, किसी को एक चीज देनी है सारा दिन आपको याद होगी, और जब वो आके चला जाएगा आपको उसे एक लम्हे में भूल जाएगी। फिर दूसरा सवाल होगा, बताओ कि मर रसूलू का, अल्लाह के नबी की तस्वीर भी दिखाई जाएगी बाज़ रिवायतों में आता है, बताओ इस शख्स के बारे में ये कौन है। अब सारी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की दावे करता हुआ, दुरूद पढ़ता हुआ, आपके नाम पे महफिलें सजाता हुआ होगा, लेकिन अगर जिंदगी उनके तरीके पे नहीं गुजरी तो अल्लाह के नबी का नाम भूल जाएगा। और जब पूछा जाएगा माँ दीनू का, व्हाट वाज योर रिलीजन, दुनिया में तुम झट से कहते हैं ना वी आर मुस्लिम, दीनिल इस्लाम, लेकिन वहाँ लफ्ज इस्लाम मुंह पे नहीं आएगा, क्यों, वो तो जाना ही नहीं, वो तो किताबों में बंद था। अमली दीन तो कुछ दो चार मुख्तलिफ मजाहब के लोगों के दीन को मिला के बना लिया। आज अगर मुसलमानों को भी देखे तो उनकी पूरी जिंदगी में कितनी चीजें जमा हो चुकी हैं, सच्चा दीन तो आज दिखता ही नहीं हमें, इसीलिए तो जब वो दीन आता है तो लोग उसके तकाजे ही नहीं पूरे कर सकते। उनको तो वो दीन चाहिए जिसमें आपको खुशखबरियां मिले, फजाइल, ये कर लो तो इतना सवाब, ये पढ़ लो तो इतना सवाब। लेकिन ऐसे लम्हे में एक इंसान उस वक्त अल्लाह ताला के सामने भीख मांग रहा होगा और उसकी जुबान पे लफ्ज़ इस्लाम नहीं आएगा। उस वक्त रिवायतों में दो तरह की बात आती है। तसव्वुर में अपने आप को कब्र में सोचें, कोई नहीं है, या यहाँ इतने साथी वहाँ कोई नहीं होगा, सगी माँ भी नहीं जाएगी, रोते तड़पते भाई बहन जितना मर्जी को रोए ना हमारे मरने पे, उसे को आओ शौक फरमाओ चलो तुम्हें भी कब्र में डाल दें, सारी मोहब्बत पता चल जाएगी। कहेगा नहीं इसको जाने दो, आपके मरते मेरे मरते सबसे पहले तो लोगों को हमसे ही खौफ आएगा। अकेले लोग उस कमरे में नहीं जाते जहाँ मैयत पड़ी हो, हमारा तो अपना नाम भी हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे ये कपड़े उतर जाएंगे, हमारे जेवरात काट के उतर लेंगे, हमारा कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, एक कोरा लट्ठा कफन की सूरत में हमें बांध दिया जाएगा उसमें, जिस पे ना कढ़ाई ना सिलाई ना सलमा ना सितारा ना मोती, वो चुभे वो कुछ करे उसमें आपका मुंह और आपके पांव हाथ बांध के कब्र के सपोर्ट कर दिया जाएगा। उस वक्त एक इंसान कब्र में ये कहता है कि काश मैं पढ़ता लिखता, हदीस के लफ्ज है, मैं वो सरासर कोट नहीं कर रही, खुलासा बता रही हूँ कि एक तो ये कहेगा ना मुझे पता ही नहीं चला, और एक हदीस में आता है कि वो कहेगा काश मैं पढ़ता लिखता, दरस्ता का लफ्ज आता है दर्स से, काश दुनिया में मैं इस किताब को पढ़ लेता जिसने मुझे अगली जिंदगी के रास्ते देने थे। लेकिन इसको तो हमने रखा मरने के बाद के लिए, इसको तो पढ़ते हैं जब दुनिया से चले जाते हैं, कहते हैं आओ सारे सपारा सपारा पढ़ो, अमल की पटारी बंद, इज़ा मात अल इंसान इनकते अमलू, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब एक इंसान मर जाता है उसका नाम है अमल मुनक़ते, क्लोज। आप में से जो बच्चियां स्कूलों में जाती हैं 3 घंटे 2 घंटे जो इम्तिहान के होते हैं उसी में ही आप लिखते हैं, वो 3 घंटे ख़त्म हो जाए तो उसके बाद घर जाके आप जितने मर्जी सवालों के जवाब उनको लिख के भेजें वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी गाफिल रहते हैं, अपनी दुनिया ही बनाते जाते हैं, और जब हम फौत हो जाते हैं खैर से तो पिछलों को मुश्किल में डाल देते हैं कि अब तुम पढ़ पढ़ के भेजो। ये तो ऐसे ही है कि अपने 3 घंटे के इम्तिहान के कमरे को कोई ऐसी लहव लाइब में गुजार दे, बातें करता रहे, सेलफोन से खेलता रहे, ये कर लूँ वो कर लूँ, और जब वो 3 घंटे ख़त्म हो जाए घर आए और माँ को कहे अब मेरे नाम की पर्चियाँ लिख के भेजो, बाप को कहे दोस्तों को कहे। तो लिहाजा जो करेंगे वही मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्यामत के दिन, क्यामत तो अभी कहाँ आई, अभी तो कब्र में है। हाँ फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस सूरी फ़ला अन्साब बैनहुम, फिर जब सूर फूका जाएगा तो आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। यौम इज़िम वला यतसाअलून, और ना कोई किसी से सवाल करेगा। फिर तो अमलों की बात है, फ़मन सकुलत मवाज़ीनहू फ़ौलाइक हुमुल मुफ्लिहून, जिनके पलड़े भारी होंगे, जिनके वेट, जिनके नेकियों के दफ्तर भारी होंगे, यही लोग फलाह पाएंगे। वमन खफ्फत मवाज़ीनहू फ़ौलाइक अल्लज़ीन खसिरू अनफुसहुम, यही लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाला। फी जहन्नम खालिदून, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और इससे अगली आयतें तो इतनी तकलीफ देने वाली हैं कि कैसे जहन्नम की आग उनके चेहरों को झुलसाएगी, जैसे बकरे की भुनी हुई सिरी होती है ना, इस तरह की कैफियत जहन्नम की आग में होगी। लेकिन साथियों इस वक्त हम सब अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें ये देखना है कि अपनी आखिरत को सामने रखते हुए फैसले खुद करें। अमूमन इंसानों का मामला क्या होता है कि वही करता है जो उसके इर्द गिर्द वाले कर रहे होते हैं, इसलिए जो किसी दीनदार माहौल में उठता है ना, पैदा हुआ बच्चा बड़ा, उसके लिए ये फैसला करना बहुत आसान होता है कि हम वो काम करें जिससे हमारी आखिरत बने। लेकिन जब कोई इंसान किसी दुनियादार माहौल में पलता है ना, इर्द गिर्द माहौल ही है, या शादियां हैं या मंगनियां हैं या दावतें हैं या सालगिरह, या कपड़े बनाना है या सिलवाना है या पहनना है, या अच्छे अच्छे खाने पकाने हैं या पकवाने हैं, इतनी ग्लैमरस लाइफ जब दिखती है ना तो बड़ा मुश्किल लगता है संजीदा होना, फिर इस किताब की तरफ आना मुश्किल लगता है। सादा कुरान पढ़ना बहुत आसान लगता है, रोज़ सुबह फजर के बाद एक सपारा पढ़ लिया नाजरा की सूरत में, सुबह शाम की दुआएं भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान आया तो 4-5 कुरान भी अल्लाह की तौफीक से पूरे हो गए, ये भी जिसको अल्लाह तौफीक दे, हर एक को ये भी नसीब नहीं है, कुछ तो सिर्फ ख्वाहिशों पर बैठे होते हैं। लेकिन मेरा इस वक्त अपने लिए और आप सब के लिए जो कहना चाहिए कि एक ऐसा सवाल है, और वो सवाल انشاءاللہ ہمیں اپنی اگلی راہیں منتخب کرنے کے لیے مدد کرے گا، اور وہ کیا کہ میں اس کتاب میں سے کتنا سمجھتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو کہوں گی، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کتاب کو کہیں سے بھی عربی میں پڑھیں اور ہمیں یہ ہماری زبان میں سمجھ آئے؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ نمازوں میں جب امام صاحب تلاوت کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے؟ تراویوں میں پورا ایک سپارہ سننا محال ہو جاتا ہے، ایک پاؤں پہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کریں، اتنا لمبا سپارہ، اتنی لمبی قرأت، کیوں سمجھ جو نہیں آ رہی؟ مثال دوں گی کہ ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں نا، تقریباً پچھلے 40 منٹ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ سب کیوں سن رہے تھے اتنی خاموشی سے؟ کیونکہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی تھی۔ اور آپ کسی ایک ایسے شخص کو یہاں بٹھا دیں جس کو اردو زبان نہیں آتی، کیا وہ 40 منٹ اس طرح بیٹھ کے سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ جو بات سمجھ آتی ہے نا، وہی اپنی لگتی ہے، اور اپنی بنتی ہی یہ کتاب کب ہے؟ جب ہمیں سمجھ آئے۔ اس سال آپ نے رمضان میں تراوی سنی سنی تھی نا، نہیں سمجھ آئی؟ واللہ ہی جنہوں نے لفظی ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا ان کو نہیں آتا سمجھ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب سے لے کے جو اگلا رمضان آئے گا، اللہ کی توفیق سے آپ لوگ، چلیں ہم ایک زیوم کر لیتے ہیں، پہلے 8 یا 10 سپارے اپنی زبان میں سمجھ رہے ہوں گے؟ یقین کریں آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو پچھلے سال پڑھا تھا، اور اس سے اگلے رمضان میں انشاءاللہ پورا قرآن سمجھ رہے ہوں گے۔ دل چاہتا ہے؟ کس کا نہیں دل چاہے گا؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میرا فائدہ ہے، میری جنت ہے، اور میری دنیا کتنی پیاری سے ہو جائے گی۔ مت سوچیں کہ اس سے دنیا میں کچھ کمی آئے گی، کچھ نہیں آتی۔ آپ کے سامنے موجود ہیں وہ لوگ جو اس سفر سے گزر چکے ہیں، نہ ان کی دنیا میں کمی، نہ کھانے میں کمی، نہ پہننے میں کمی، دنیا بھڑ بھڑ کے اس کی طرف لپکتی ہے، صرف چند مہینے کی یہ کمٹمنٹ ہے۔ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ تو عادی ہیں، صبح سے 7-8 بجے آپ جاتے ہیں گھروں میں، 4-5 بجے تک آتے ہیں، 15-16 سال پڑھتے ہیں، پھر کہیں جا کے ایک ماسٹر ہوتا ہے، اور ایک ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے کو بعض جاب بھی نہیں ملتی۔ ایک فیلڈ میں ماسٹر کر لے تو دوسرے فیلڈ کی الف بے بھی نہیں آتی۔ یہ قرآن آپ کو وہ ماسٹر کروائے گا کہ آپ کو اس دنیا میں ڈیل کرنا آ جائے گا اور آخرت کے معاملات کو سنوارنا آ جائے گا۔ اس کورس کو ہم نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ اچھی بیویاں کیسے بنتے ہیں، اچھی بیٹیاں کیسے بنتے ہیں، اچھی مائیں کیسے بنتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے گھروں کو اچھا نہیں چلائیں گے نا تو ہم دین کا کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک پورا اس کا ٹاپک ہے ہوم مینجمنٹ، آپ کو گھر چلانا سکھایا جائے گا، آپ کو دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے جائیں گے۔ یعنی اس میں کوئی ایسا روایتی طریقہ نہیں کہ آپ کو بٹھا کے 4 گھنٹے لیکچر ہی دیے جا رہے ہیں، انٹریکٹیو ورک شاپ ہوں گی۔ تو آپ ضرور اس چیز کی نیت کر کے جائیں، اگر شیطان خوف دلا رہے نا تو وہی پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، گھر کا کیا بنے گا؟ دیکھیں میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں جو پرابلمز اس وقت آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی سردی بہت ہے، تو بچے جاتے ہیں، کسی بچے نے اسکول سے 6 ماہ کا کبھی آف لیا؟ آپ ہی مائیں ہیں جو ان کو سنوار سجا کے بھیجتی ہیں کہ جاؤ پڑھنا تو پڑے گا، کوئی سردی نہیں ہے۔ جس کو میں کہتی ہوں جہنم کی آگ یاد آئے گی یا جس کو جنت کی لذتیں سامنے رہیں گی، اس کے لیے سردی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ نے ایسے پیارے انتظام دیے ہوئے کہ اب یہاں آپ کو گرمی لگ رہی ہے، باہر آپ کو سردی لگے گی، یہاں آپ کو گرمی لگ رہی ہے، یہی فرق ہے نا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسری بات ہے جی گھر کیسے چھوڑیں، تو یہ گھر تو چھوڑ ہی جانے ہیں، ایک دن آئے گا میں نے اس گھر سے نکل جانا ہے، گھر ادھر ہی رہے گا۔ ہم کئی کئی مہینے پاکستان جا کے رہتے ہیں، ہمارے گھر یقین کریں میں کچھ نہیں کہتے، آپ کھائیں گی بھی، آپ پکائیں گی بھی، آپ گھر صاف بھی کریں گی، بلکہ مینیج ہو جائے گا۔ جب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے سارے کام وقت پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ریگولر ہیں وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن کلاس نہیں ہوتی نا، اس دن سارا دن گھر گندا رہتا ہے، کام لٹکا ہے، سستی ہے نا، اچھا آج گھر چھٹی ہے چھٹی ہے، اور جب کلاس ہونی ہوتی ہے نا تو کلاس سے پہلے، بعض ایسی بھی ماشاء اللہ اچھی لڑکی ہیں، کہتی ہیں ہم فجر پہ اٹھتے ہیں، نماز روزہ کر کے ساتھ ہی کھانا پکنا رکھتے ہیں، ساتھ ہی کچن سمیٹتے ہیں، 10 بجے ہماری جو کلاس جو 9 بجے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے، کہتی ہیں ہم سارے کام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کلاس کے بعد آرام سے تسلی بھی ہوتی ہے، کھانا پکا ہوا ہے، بچے آئے چلیں روٹی پکا دی، کام ہو گیا، صرف مینیج کرنے کے لیے، اور وہ مینیج کرنا بھی اس میں ہم سکھائیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر واقعی کچھ آتا ہے، ایک گولڈن چانس ہے، اب ملے آگے ملے گا نہیں ملے گا کسی کو نہیں پتا، اور میں نہیں کہتی کہ آپ کے اوپر کوئی احسان ہے کہ یہ ادھر ہو رہا ہے، ये अल्लाह के फैसले हैं, जिसको अल्लाह ने तौफीक देनी है वो आएगा और लेंगे, बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन इस तरह आमने सामने बैठ के हो सकता है आपके पास दोबारा मौका ना मिले। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दें, इसके लिए आप इस्तखारा कर लें, अल्लाह से मदद मांगें कि अल्लाह मुझे महरूम लोगों में से ना करना, ये दुनिया के तकाजे निभाते निभाते आगे ना चली जाऊं। फिर एक और उजर क्या आता है जी, पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी पढ़ा ही नहीं, अब तो इतने साल से पेपर पेन ही नहीं पकड़ा। फिक्र ना करें, आपको पढ़ना लिखना भी सिखा देंगे। बस लोग डरते हैं, कमिटमेंट बड़ी है, करें तो सही ना निभाए। आप बिस्मिल्लाह करें, फॉर्म फिल करें, आए 2 4 10 दिन, नहीं होगा तो कोई आपके वारंट थोड़ी जारी करेगा, ना करें। कल क्यामत के दिन अल्लाह को कह तो देंगे ना, अल्लाह मैंने कोशिश की थी, अब नहीं हुई तो ना सही, और जब सुन के ना माने तो वो तो ऐसे ही होता है कि हु केयर्स, मुझे क्या, बुलाता रहे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, मैं नहीं मानती। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अल्लाह आसानियां कर देगा, कोई बड़ी जान पे लेने वाली चीज नहीं होती। आप आए, आपको जिस तरह की सहूलत चाहिए, कुछ नहीं बैठ के सिर्फ सुन के चले जाए, नाम तो लिखा जाए, एक साइन हमारा स्टेटस बदल देता है। सूरह इब्राहिम की आयत है, वइस्तअذن रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और जब तुम्हारे रब ने पुकारा कि जब तुम शुक्र करोगे ना तो मैं नेमत बढ़ा दूंगा, लेकिन वलइन कफरतुम, अगर तुमने ना शुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। तो अल्लाह ना करे कि हम नेमतों को पीछे रखने वाले बने। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब, वैसे तो आप आएंगे, हम एज अ गेस्ट भी बुलवाते हैं, और इंशाल्लाह जो जगह हमने ली है, अल्लाह करे उसमें अल्लाह वसत डाले, आप कभी भी आ सकते हैं उसमें। आपको ये भी नहीं है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो नहीं आएंगे, लेकिन उसमें आपके पास चूंकि कमिटमेंट नहीं होती तो आप खुद ही थोड़े दिन बाद लेजी हो जाते हैं, फिर कभी जाते हैं कभी नहीं, और फिर बिल्कुल ही नहीं जाते, और जित बाज लेस बन के आते हैं लिसनर्स गेस्ट, और बाद में भी पक्के भी हो जाते हैं, हर एक का मुख्तलिफ मामला। बिस्मिल्लाह करें, आज यहाँ आए हैं तो समझे कि यही, और कोर्स का नाम भी इतना प्यारा है, सबीलुल जन्ना, जन्नत का रास्ता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कमी कोताहियों को माफ़ कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.